अभिमन्यु इशिका के साथ घर जा रहा था। प्रणाली बार बार उसे कॉल कर रही थी, लेकिन अभिमन्यु ने उसे ब्लॉक कर दिया था। प्रणाली को ब्लॉक करने के बाद अभिमन्यु के पास हॉस्पिटल से डॉक्टर का कॉल आया और उसने बताया कि प्रणाली सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। पानी अब अभिमन्यु के सिर से ऊपर जा चुका था। अभिमन्यु कुछ पल के लिए चुप रहा, तभी डॉक्टर ने अभिमन्यु से वापस कहा, मिस्टर राजवंश, प्लीज थोड़ी देर के लिए आ जाइए, हम उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। इशिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, क्योंकि प्रणाली अभिमन्यु और उसे अलग करने की कोशिश कर रही थी। इशिका को अभिमन्यु के जवाब का इंतजार था कि क्या एक बार फिर वो प्रणाली के पास चला जाएगा। तभी अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरी पेशेंट नहीं है डॉक्टर, सेकंड थिंग मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो आकर उसका इलाज कर दूंगा। उसकी बात सुनकर डॉक्टर बुरी तरह चौंक गया। पहले भी उसने अभिमन्यु को काफी बार कॉल किया था, यहाँ तक कि आधी रात को कॉल करने पर भी अभिमन्यु प्रणाली के लिए हॉस्पिटल आ जाता था। इस बार अभिमन्यु ने आने से साफ मना कर दिया था। अभिमन्यु ने आगे कहा, आगे से वो कुछ भी करे मुझे कॉल मत करना। ठीक है सर, डॉक्टर ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। इशिका ने कुछ नहीं कहा, दिल ही दिल में उसे थोड़ी तसल्ली हो रही थी। कुछ देर में वो दोनों राजवंश विला पहुंच चुके थे। अभिमन्यु और इशिका आते ही सीधा वसुधा के कमरे में उसे चेक करने के लिए गए। वसुधा सो चुकी थी तो वो दोनों भी कमरे से बाहर निकल गए। इशिका सोने के लिए गेस्ट रूम की तरफ बढ़ रही थी, तभी अभिमन्यु ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। इशिका ने पलटकर अभिमन्यु की तरफ देखा तो उसने धीमी आवाज में कहा, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, अब तो चीज़ें ठीक हो रही हैं, फिर तुम्हें अलग रूम में सोने जाने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरे रूम में मेरे साथ सोने वाली हो। बोलते हुए अभिमन्यु कुछ पल रुका और फिर आगे बोला, क्यों ना हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। इशिका की पलकें झुक गई थीं। अचानक ही उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। वो समझ रही थी कि अभिमन्यु क्या कहना चाहता है या उनके रिश्ते में आगे बढ़ने का मतलब क्या था। इशिका ने नज़रें उठाकर अभिमन्यु की तरफ देखा, उसे भी वो अच्छा लगता था। ऐसा नहीं था कि इशिका अभिमन्यु से दूर रहना चाहती थी। उसने कुछ पल सोचकर हाँ में सिर हिलाया, शायद अब वो भी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। अभिमन्यु ने इशिका को अपने कमरे में चलने का इशारा किया। इशिका आगे बढ़ी। जैसे ही वो कमरे के अंदर गई, उसे कमरा बंद होने की आवाज़ आई। वो कुछ समझ पाती उससे पहले अभिमन्यु पीछे से आकर उसे कस के गले लगा लिया था। उसका सिर इशिका के कंधे पर था। इशिका को अपने कंधे पर अभिमन्यु की सांसें महसूस हो रही थीं। अभिमन्यु जिस तरह से इशिका को गले लगाकर खड़ा था, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो उसके करीब आने के लिए कब से बेकरार था। अभिमन्यु ने फिर इशिका का चेहरा अपनी तरफ करके उसे अपने सीने से लगा लिया था। अभिमन्यु ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, इशिका आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली वी आर टुगेदर। इशिका को लगा था कि घर आने के बाद उनके बीच प्रणाली को लेकर कोई बहस होगी, लेकिन अभिमन्यु ने तो उसका नाम तक नहीं लिया था। इशिका के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसने अभिमन्यु की कमर पर हाथ रखकर हल्का सा सहलाते हुए कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ। इशिका पहली बार किसी लड़के के इतना करीब आई थी। अभिमन्यु उसकी बेचैनी को महसूस कर सकता था। वो उससे अलग हुआ और उसके गाल पर हाथ रखा। अभिमन्यु ने अंगूठे से उसके गाल को सहलाते हुए कहा, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए और मैं देने के लिए तैयार भी हूँ। इशिका के बिना कहे ही अभिमन्यु सब कुछ समझ गया था। अभिमन्यु ने उसके फॉरहेड पर हल्का सा किस किया, फिर वो दोनों साथ में बेड पर थे। अभिमन्यु इशिका को अपनी बाह में लेकर काफी नॉर्मल तरीके से सो रहा था। इशिका ने अपने मन में कहा, तुम सच में बहुत जेंटलमैन हो अभिमन्यु राजवंश, इतना बेचैन होने के बावजूद भी तुमने खुद पर अच्छे से कंट्रोल कर रखा और मुझे टाइम दिया। शायद मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ जिसे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मिला है। कुछ ही देर में दोनों नींद के आगोश में थे। अगली सुबह वसुधा दिग्विजय के साथ डाइनिंग टेबल पर थी। अभिमन्यु और ऋषिका अब तक उठे नहीं थे। निवेदिता ने वसुधा को पहले ही बता दिया था कि वो दोनों रात को साथ में बाहर गए थे और आने के बाद दोनों अभिमन्यु के कमरे में साथ में सोए थे। इस बात को जानकर वसुधा बहुत खुश थी। दिग्विजय ने अभिमन्यु और ऋषिका को वहां ना देखकर वसुधा से कहा, भाभी आपने तो बताया था कि आपकी बहू आपकी बहुत देखभाल करती है और अभिमन्यु भी पूरा टाइम देता है। फिलहाल तो मुझे दोनों की डाइनिंग टेबल पर नजर नहीं आ रहे हैं, क्या वो दोनों अब तक सो रहे हैं? उन्हें बस वसुधा की परवाह थी इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो दिल की बहुत अच्छी है, अभिमन्यु के साथ मिलकर मेरी पूरी देखभाल करती है। आप तो जानते हैं आजकल के बच्चे देर तक सोते हैं, तो बस उठने में देर हो गई होगी, वसुधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अगर ऐसा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर चाहे इस घर के बाकी लोग उस खमंडी बंदर की पत्नी को कितना भी नापसंद क्यों ना करें, दिग्विजय ने कहा। दिग्विजय और वसुधा बात कर ही रहे थे कि वसुधा ने देखा इशिका और अभिमन्यु साथ में बेडरूम से बाहर निकले थे। दोनों तैयार हो चुके थे। उन्हें देखकर वसुधा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। अच्छा भाभी मेरा हो गया, मैं बाद में मिलता हूँ, दिग्विजय ने कहा और वहां से जाने लगे। इशिका ब्रेकफास्ट टेबल पर उनके पास आ ही रही थी कि तभी हाउस हेल्पर उसके साथ एक बैग के साथ आया। उसने इशिका को उसे पकड़ाते हुए कहा, मैडम ये आपके लिए आया है। इशिका ने उसे उसके हाथ से लिया और बैग को देखा। उसके अंदर एक गिफ्ट बॉक्स था जो लक्जरी ज्वेलरी ब्रांड का पैकेट था। एक पल के लिए इशिका हैरान रह गई। कल वो जिस अनजान अंकल से बात कर रही थी उन्होंने भी इशिका को ज्वेलरी भेजने का एडवाइस दिया था। उसे देखते हुए इशिका ने अपने मन में कहा, कल मैं उन हैंडसम अंकल को ज्वेलरी भेजने की एडवाइस दे रही थी और आज मिस्टर सिंघानिया ने मुझे ज्वेलरी भेजी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हैंडसम अंकल ही मिस्टर सिंघानिया हो? इशिका हैरान रह गई थी। उसने जल्दी से उसे खोलकर देखा तो उसमें उसी ब्रांड की ज्वेलरी के बजाय हैंडबैग था। उसे देखकर इशिका ने राहत की सांस ली। उसने धीरे से कहा, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, ये बस एक इत्तेफाक हो सकता है। इशिका इस बारे में सोच ही रही थी कि उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उसे अरमान का मैसेज आया था। अरमान ने लिखा था, क्या तुम्हें मेरे चाचू का भेजा हुआ गिफ्ट मिल गया है? तुम्हें वो कैसा लगा? क्या अब तुम उनके लिए टाइम निकाल सकती हो? इशिका ने जवाब में लिखा, उन्हें बोलो कि मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, इसलिए मुझे गिफ्ट भेजना बंद करें, बस मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगी। इशिका को लगा कि अगर उसने मना नहीं किया तो केशव उसे गिफ्ट भेजते रहेंगे। वहीं इशिका ने जो जवाब दिया था वो अरमान ने केशव को दिखा दिया था। मैसेज देखने के बाद केशव को बुरा लग रहा था क्योंकि वो इशिका से मिलना चाहते थे। उन्होंने अपने इमोशंस को काबू किया और आह भरते हुए कहा, ठीक है तो फिर हम परसों दिल्ली वापस लौट जाएंगे, लगता है वो हमसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है। अरमान ने सिर हिलाया और फिर कुछ पल रुक कर कहा, ठीक है लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है आपकी उस नई दोस्त ने ज्वेलरी भेजने के लिए कहा था, फिर आपने हैंडबैग गिफ्ट क्यों किया? क्योंकि एक फाइन क्वालिटी की ज्वेलरी काफी कॉस्टली आती है और मुझे नहीं लगता कि वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करती। बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, बहुत खुददार है, केशव ने बताया। इशिका के मना करने पर केशव को काफी बुरा लग रहा था। वो मन ही मन सोचने लगे, पता नहीं मैं ही क्यों उस लड़की से मिलने की जिद पकड़ कर बैठा हूँ। उसने मना कर दिया तो दिल के दिल में बहुत बुरा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं उससे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ।
केशव इशिका के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी इशिका ने उसे मैसेज करके पूछा, अच्छा हैंडसम अंकल, आप जिस लड़की को मनाने की कोशिश कर रहे थे क्या वो मान गई है? हाँ, उसे छोड़ो, मैं परसों वापस दिल्ली जा रहा हूँ, हमारी डिनर डेट याद है ना, हम मिलने वाले हैं, इसे कैंसिल मत कर देना, केशव ने हल्का मुस्कुराकर कहा। चिंता मत कीजिए, मैं जरूर मिलने के लिए आऊंगी और इसके लिए मैंने अपनी मॉम से भी बात की है, वो मेरे साथ आने के लिए तैयार है। आप उनसे मिलोगे तो जान जाओगे कि मेरी माँ सच में दुनिया की बेस्ट मॉम है, इशिका ने जवाब में कहा। ये तो मिलने पर पता चलेगा ना, तुम्हारी मॉम ज्यादा खूबसूरत है या फिर मेरी मॉम? उन्हें देखने से पहले मुझे कुछ नहीं कहना है, फिलहाल के लिए मेरी मॉम दुनिया की बेस्ट मॉम है, केशव ने इशिका को बच्चों की तरह चढ़ाते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ इशिका ने केशव के भेजे हुए हैंडबैग को वापस नहीं किया था क्योंकि वो ब्रांड का जरूर था पर ज्यादा महंगा नहीं था। इशिका ने उसे कमरे के अंदर रखवा दिया था और फिर वो अभिमन्यु के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर आ गई थी। दिग्विजय वहां से जा चुके थे इसलिए ब्रेकफास्ट टेबल पर इशिका और अभिमन्यु के अलावा वसुधा बैठी हुई थी। इशिका ने देखा नाश्ते में पेस्ट्रीज रखी हुई थी। अभिमन्यु अपने हाथों से इशिका को खिला रहा था। एक बाइट लेने के बाद इशिका ने कहा, ये सच में बहुत टेस्टी है। अच्छा सच में? अभिमन्यु ने भौहें उठाकर कहा और फिर इशिका के होठों के कोने पर लगी पेस्ट्री को अपनी उंगली से हटाकर उसे टेस्ट करके कहा, हाँ सच कहा, ये तो वाकई काफी टेस्टी है। इशिका के गाल लाल हो रहे थे, उसने अपनी नजरें नीचे कर ली, उसकी हर एक हरकत अभिमन्यु के दिल में हलचल पैदा कर रही थी। वहीं वसुधा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इस तरह अभिमन्यु खुलेआम इशिका से अपना प्यार जता रहा था, ये देखकर उन्हें अच्छा लग रहा था। वो चुपचाप उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी। अभिमन्यु ने दूसरी डिश उठाई और इशिका को अपने हाथ से खिलाते हुए कहा, अच्छा बताओ ये कैसा है, फिर मुझे भी टेस्ट करके देखना है कि ये कैसा है। तुम मुझे परेशान करने के लिए ये सिप कर रहे हो ना, चलो चुपचाप खाओ, मुझे अपने हाथ से खाना आता है, इशिका ने उसे डांटते हुए कहा। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और चुपचाप नाश्ता करने लगा। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद में उसने इशिका से कहा, मुझे ऑफिस में कुछ काम है तो जाना पड़ेगा, लंच टाइम में मैं घर आ जाऊंगा, उसके बाद मैं घर से ये सब कुछ देख लूंगा। अभिमन्यु इनडायरेक्टली अपने शेड्यूल के बारे में इशिका को बता रहा था, ये उसकी तरफ से इशारा था कि दोपहर के बाद वो उसी के साथ टाइम स्पेंड करने वाला है। इशिका ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उन दोनों की ये खुशी थोड़ी ही देर की थी, अचानक अभिमन्यु का मोबाइल बजा। न जाने क्यों इशिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। कल रात वैसे भी प्रणाली की तरफ से उसे काफी कॉल्स आ रहे थे। इशिका ने मन ही मन कहा, प्लीज नहीं, थोड़ी टाइम तो हमें खुशी से रह लेने दो। ये पृथ्वी का कॉल था। अभिमन्यु ने कॉल पर बात की लेकिन जैसे ही उसने पृथ्वी की बात सुनी उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, मानो कल रात अभिमन्यु को जो नई नई खुशी मिली थी वो चंद पलों की थी। कॉल कट होते ही इशिका ने तुरंत परेशान स्वर में पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? अभिमन्यु परेशान लग रहा था, इसलिए इशिका ने उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वो अकेला न महसूस करे। अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखा और धीरे से कहा, प्रणाली ने हॉस्पिटल की बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली है।